بسم الله العلي العظيم، أعوذ بالله من الشيطان العين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله، لا سيما بقية الله، ولعنة الله على أعدائهم أعد الله من يومنا هذا إلى لقاء الله. أما بعد، فقد قال الله في كتاب حكيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ياسين والقرآن الحكيم. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ سورہ یاسین کی مجلس کی پانچویں مجلس کا سلسلہ ہے، اور آج خصوصاً آج شہادت امام علی نقی علیہ السلام کا پرسہ میں صلی علی محمد وآل محمد امام اعظم علیہ السلام کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اور مومن کی خدمت میں پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ امام کے ظہور میں تعجیل فرمائے. تو جو سلسلہ جو چل رہا ہے 48 آیت سے چل رہا ہے سورہ یاسین کی، وہ یقول متا حاض الواد ان کن تم صادقین، اور کہتے ہیں اگر تم سچے ہو تو یہ وعدہ کب پورا ہوگا. یہ سوال جو ہے پوری دنیا میں گونج رہا ہے، ہر آدمی یہی کہہ رہا ہے سوائے چند مومنین کے، کہ تم یہ جو بڑی بڑی باتیں کرتے ہو کہ قیامت آئے گی، یہ کب ہونے والا ہے؟ تو جواب اگلی آیت ہے، ما ينظرون الا صاحتم واحدتم تاخذهم وهم يخصمون. یہ تو فقط ایک چنگھاڑ کے منتظر ہیں، جبکہ وہ آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے ان کو آ پکڑے گی. اللہ نے جواب دے دیا، جیسا سوال ویسا جواب. کہا کہ یہ تو بس ایک واحد چنگھاڑ کے منتظر ہیں، جب آپس میں جھگڑ رہے ہوں گے تو آ پکڑے گی. تفسیر میں ہے کہ رسول اکرم کی حدیث ہے کہ جب قیامت ہوگی تو اگر کسی نے کھانا اپنی پلیٹ میں سجایا ہوگا، اور جب چنگھاڑ آئے گی تو لقمہ منہ میں بھی نہیں جائے گا اور وہ دنیا ختم ہو جائے گی. اگر کپڑا پھیلایا ہوگا، اس کو سمیٹنا چاہے گا سمیٹ نہ پائے گا، ایک چنگھاڑ میں سب ختم ہو جائے گی دنیا، موقع تک نہیں ملے گا. وہ جب وہ آپس میں جھگڑتے ہوں گے کب ہوگا؟ وہم یخصمون. یہ لوگ کیسے جھگڑا آئے گی جب جھگڑ رہے ہوں گے؟ جھگڑنے کی تفسیر یہ کہ جھگڑا کیا کرتے ہیں وہ لوگ، دنیا جھگڑے کا مقام ہے، ہر آدمی اسے جھگڑتا رہتا ہے، سوائے جھگڑے کے یہاں کچھ نہیں ہے. آج آپ دیکھیں تھرڈ ورلڈ وار کی بات ہو رہی ہے، ہر آدمی دوسرے سے جھگڑنے کو تیار ہے، گھروں میں جھگڑے ہو رہے ہیں، مسجدوں جھگڑے ہو رہے ہیں. تو جھگڑے چلتے رہیں گے آخری تک. جی ہاں، یہ جھگڑے ہوں گے سب انتقال فرما جائیں گے. فلا یستطیعون توصیۃً ولا الی اہلہم یرجعون. نہ تو یہ وصیت کر سکیں گے نہ اپنے گھر والوں طرف لوٹ کے جا سکیں گے. قیامت کا منظر ایک عجیب منظر ہے. اللہ نے اپنی طاقت دکھائی ہے، آپ سوچیں اللہ نے طاقت دکھائی ہے اپنی. یہ آج بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں کہ چھڑ بھر بھر ہو جائے گا اور دنیا دو دن میں ختم ہو جائے گی، ایک دن میں ختم ہو جائے گی. اللہ نے کہا ایسا نہیں ہے، جب قیامت آئے گی تو صرف لمحے میں چلے جائیں گے آپ سب، لمحے میں ایک چنگھاڑ آئے گی. اور کیا ہے کہ نہ تو تم وصیت کر سکو گے نہ اپنے گھر میں جا کے لوٹ پاؤ گے، گھر والوں میں. ہر آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ جب موت آئے تو وصیت کرے اور گھر میں جا کے لیٹے آرام سے، اور پھر گھر والے بھی ہوں اور انتقال ہو. کہ نہیں، قیامت ایسا نہیں ہونے والا، ختم ہو جاؤ گے. تو اور اس کا یہ پوچھ رہے تھے کہ قیامت کب آئے گی، تم سچے ہو؟ بار بار رسول اکرم نے کہا کہ اس کا علم صرف خدا بندے عالم کو، ہو سکتا کل آ جا، اس کا علم صرف خدا بندے عالم کو ہے. رسول اکرم نے کہا مجھے بھی اس کا علم نہیں ہے. یہ بار بار سوال قرآن میں ہوا، وہ بابا قرآن نے یہ جواب دیا، صرف خدا کو اس کا علم ہے. درود پڑھ رہا ہے. ونفق الصور فدا ہوں من الاجداث الى ربهم ينسلوا. جب سور پھونکا جائے گا تو یہ قبروں سے اٹھ کر اپنے پروردگار کی طرف دوڑ پڑیں گے. ونفق الصور فاذا هم من الاجداث الى ربهم ينسلوا. یہ قبروں میں سے اٹھ کے دوڑیں گے. ینسلون کی جو تفسیر ہوئی ہے نسل سے ہوئی ہے، نسل ینسلون نسل سے ہوئی ہے. نسل کس کو کہتے ہیں؟ کسی چیز کا جدا ہونا، जब कब्रों से उठेंगे तो बाप बेटे से जुदा हो जाएगा, भाई भाई से जुदा हो जाएगा, और अपने रब की तरफ दौड़ पड़ेंगे। आप सोचें, आप इमेजिन करें, अपन इमेजिन करें कि कयामत का मंजर क्या होगा। मंजर ये होगा कि एक चिंगाड़ आएगी, चिंगाड़ आएगी, सब चले जाएंगे, ताकत देंगे पर आलम की, सब चले जाएंगे एक उसमें, सारे के सारे जो शक थे, सारे झगड़े थे, सब खत्म हो जाएंगे एक चीख में। ये पावर है तौहीद का। और दूसरे सूरज फुकाया, सब खड़े हो गए, दौड़ने लगेंगे। आप सोचो ताकत कितनी है वाहिद परवरदिगार की इन दो आयतों में। एक में सब चले जाएंगे लम्हे में, और दूसरे लम्हे में जब सूरज सब दौड़ने लगेंगे परवरदिगार तरफ, दौड़ने लगेंगे। नफ़ुख सूरी फैदाहुम मिलल अजदासि इला रब्बिहिम यंसिलू, दौड़ पड़ेंगे अपने परवरदिगार तरफ। आहा क्या खतरनाक मंजर होगा। आप सोचें कि क़यामत के मंजर में ये, जब हम उठेंगे तो हमारी याददाश्त रहेगी, हमको सब याद रहेगा हमने दुनिया में क्या करा था। खुसूसन हमको आज के ज़माने के लोगों को सोचना चाहिए, जबकि अभी तो खाना पानी बहुत है और लग्जरी में जी रहे हैं। आप सोचें आदम अलैहिस्सलाम से लोग खड़े होंगे, वो ज़्यादातर फ़कीरी के लोग थे बेचारे, और कई अम्बिया भुखमरी में शहीद हो गए, हम उनके साथ उठेंगे। अच्छा कपड़ों बदन पे कपड़े भी नहीं होंगे, हमारी हालत कैसी होगी। आप सोचें करोड़ों खरबों लोग उठेंगे, और हम लग्जरी वाले लोग, आज की दुनिया के कारों वाले लोग, पेट भरे लोग, आप सोचें हमारी हालत क्या होगी। अल्लाह अकबर, क्या हालत होगी कयामत दिन हमारी। आप सोचें तो नींद नहीं आएगी रात में, हम सब दौड़ रहे होंगे किनके साथ, उन सख्त सख्त जंगजुओं के साथ जिन्होंने जिंदगी गरीब में गुजारी, तकालीफ में गुजारी, और हम लग्जरी वाले लोग दो मिनट पैदल नहीं चल सकते। हमको कयामत के मंजर को जाना है, खुदा रहम करे, हमको जितना करना चाहिए, जितना करना चाहिए किसी को ना करना चाहिए, क्योंकि हमने जितनी लग्जरी उठाई है इसकी सारी अर्जदाद हमें रहेगी। अल्लाह रहम करे, अल्लाह रहम करे, जब हम दौड़ते जाएंगे दूसरों का बरहना, कपड़े भी नहीं होंगे, खाना नहीं होगा, जाना रब्बुल आलमीन के हुजूर में, अल्लाहु अकबर, दुरूद पढ़ दें। कालू या वैलना मम बसना मिम्बर का दिन हादा महवाद रहमान व सदक अल मुरसलून, कहेंगे आए हाय हमको हमारे ख्वाबगाह से किसने उठाया। ये वही जिसका रहमान ने वादा किया था और पैगंबरों ने सच कहा था। कालू या वैलना मम बसना मिम्बर का दिन, कि हमको हमारे ख्वाबगाह से किसने उठाया। हाजा मा वादुर रहमान व सदक अल मुरसलून, इसकी तफसीर जो है ख्वाबगाह की वो बरजख है, कि हमारे ख्वाबगाहों से किसने, बरजख की तफसीर है, कि हमको हमारी बरजख एक ख्वाबगाह की तरह है। जब हम बरजख में रहते हैं तो ख्वाबगाह रहती है। तफसीर में ये कि बरजख में दो कैटेगरी के लोग हैं, एक प्योर बिलीवर और एक प्योर काफिर। प्योर बिलीवर बरजख में नियमतें हासिल करेगा, पूरी नियमत हासिल शौदाएँ और ये, और जो प्योर जो काफिर होगा, सख्त काफिर, वो अजाब में मुब्तला होगा, और बाकी के लोग बीच के रहेंगे। तो जब कयामत का मंजर आएगा तो कयामत के मंजर के दिन जो काफिर होगा वो डर जाएगा कि ये जो अजाब था कुछ नहीं, जो सामने जो जहन्नम का अजाब दिखेगा, और मोमिन खुश हो जाएगा कि अभी तो कुछ भी नहीं था, जो सामने नेमतें मौजूद हैं। तो ख्वाबगाह दिखेगी बरज़ख, क्या हमारे ख्वाबगाह से हमको किसने उठाया। हाजा मा वाहदुर रहमानो वो सदक अल मुरसलून, ये वही है जिसका रहमान ने वादा किया था, वो पैगंबरों ने सच कहा था। आप सोचें हम अपने आप को रखें, आज हमारा ईमान कितना कम है। जब हम खबरों से दौड़ते उठेंगे तो वो ईमान कुछ और होगा, जो आज ईमान है हमारा फर्क होगा जमान में। हम भी ये ना कहने लगे कि ये किसने उठाया। हाजा मा वाहदुर रहमानो सदक अल मुरसलून, ये रहमान को हम आज पहचान लें, ये रहमान का वादा, हाजा मा वादा, वादा रहमान का समझ में आ जाए, वो सदक अल मुरसलून, ताकि हमारा दिल हमारी कब्रों में मौजूद रहे। एक दुरूद पढ़ दे। इन कानत अल्लाह साहितम वादतम फाइदा हम जमी लदेना महदरून, सिर्फ एक चिंगाड़ होगी और ये सब के सब हमारा सामने आके जमा हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। आप सोचेंगे ताकत क्या तौहीद की। अभी लोग शक करते हैं, शुरू में क्या आया सुनी थी कि वादा कब होगा, इस तरह की बातें हो रही थी, अब क्या है? फिर एक चिंगाड़ होगी और सब के सब हमारे सामने जमा हो जाएंगे। अल्लाह अकबर। एक चीख में सब मर जाएंगे, दूसरी सूर में सब उड़ जाएंगे, तीसरी चीख के अंदर सब खड़े हो जाएंगे। अल्लाह अल्लाह सुबहान तआला में मुलाकात करेंगे, और हर एक एक चीज मतलब जर्रा बराबर भी अगर किसी ने नेकी करी हो तो दिखा दी जाएगी, वो जर्रा भर भी बदी करी हो दिखा दी जाएगी, सब देखेंगे। और हम सबको जमा होना है। अब जब इंतकाल होगा तब ख्वाहगा में चले जाएंगे, कब इंतकाल होता है खुदा को मालूम है, ख्वाहगा में चले जाएंगे और उठेंगे तो इस तरीके से दौड़ते उठेंगे, और उस वक्त करोड़ों का मजमा होगा। आप सोचे भी भज में जाते तो चंद लोग होते हैं, कितने लाख होते हैं, वो चंद लाख लोग होते हैं, हम लगते हैं हम लास्ट हो गए, हम लास्ट सोल दिखते हैं। हज में जाते हैं आप अरफात में जब रहते हैं तो कैसा लगता है, आपकी कोई आइडेंटिटी नहीं रहती, आपको कोई पूछना वाला नहीं होता अरफात में, यही होता ना। आप सोचे कयामत के दिन हमारी क्या आइडेंटिटी रहेगी, हमारे क्या हालत होगी, कि हम उम्मीद करेंगे हम जन्नत चले जाएं, हम उम्मीद करेंगे जन्नत चले जाएंगे और हमारे सामने हमारा अमल नामा हाजिर होगा। एक सख्त मंजिल है कयामत की, एक सख्त मंजिल है। एक दुरूद पढ़ दें, लेकिन परवरदिगार क्या फरमाता, फल योमा ला तुज़लमु शयूं, फल योमा ला तुज़लमु नफ्सुं शयूं वला तुज़ज़ौना इल्ला मा कुंतुम तामलू। रहमान खुदा ने क्या फरमाया, इसके बाद रहमान खुदा ने क्या फरमाया, इसलिए तो हम उसकी इबादत करते हैं, क्यों कहते हैं सुब्बुल कुदुस रब्बुल मलकत रूह, सुभान पाक है अल्लाह। फल योमा ला तुज़लमु नफ्सुं शयूं, उस दिन किसी भी नफ्स को पे जुल्म ना किया जाएगा, वला तुज़ज़ौना इल्ला मा कुंतुम तअमलून, तुमको वही मिलेगा जो तुम किया करते थे। इसलिए इस रहमान को सजदा करते हैं कि अगर जुल्म ना करा होगा तो सही रहोगे, डरेगा वो जो जालिम होगा। पाक परवरदिगार की खुसूसियतों में क्या कहते हैं, तौहीद और अदल। तौहीद के बाद हमारे अकायद में क्या अदल है, यह आयत उसी की है कि आज किसी पे कोई जुल्म ना होगा और वही मिलेगा जो तुम किया करते थे। अल्लाह अकबर, हमको चाहिए कि हम किसी पे जुल्म ना करें। मौला मुत्तकियान के शिया हैं, मौला मुत्तकियान ने जिंदगी में दिखा दिया, मौला ने कभी किसी पे ताकीद हमेशा करें कि जुल्म ना करें और जालिम के सामने खड़े हो जाएं। दुरूद पढ़ दें, इन्ना असहाबल जन्नति तिल योम फी शुगलिन फाकिहून। और एक बड़ी मंजिल है, बड़ी मंजिल अल्लाह ने जो मंजिल जो आगे भेजी ना, एक अजीब मंजिल भेज दी आगे। अभी तो ये भीड़ लगी हुई थी और परेशान थे लोग, भीड़ लगी थी लोग परेशान थे। अब आगे अल्लाह ने क्या कहा, इन असहाबल जन्नत योम फी शुगलिन फाकिहून। ये जो आयतें हैं ना, ये आयतें गौर फिक्र की आयतें हैं, सूरह यासीन की आयतें। बेशक इन असहाबल जन्नत योम, बेशक उस दिन जन्नत के लोग ऐश और निशात के मशगले में मशगूल होंगे। कितनी बड़ी मंजिल है, अभी इस मंजिल में थे कि बरहना उठे थे, पेट भी भरा था कि नहीं किसको मालूम कैसे उठे थे। और अब क्या मंजिल है कि बेशक उस दिन जन्नत के लोग ऐश और निशात में मशगूल होंगे, शुगुलिन फाकिहून। फाकिहून मतलब खुश होना, खुशियां मनाना, शुगुलिन मतलब बिजी रहना, बिजी रहेंगे वो। ऐसा बजाना क्या करेंगे, बिजी रहेंगे, दे आर पार्टी। आज की पार्टी होती है ना, पार्टी में बिजी रहते हैं। आप देखेंगे पार्टी होती है लोग कैसे बिजी रहते हैं, आजकल पता नहीं क्या पार्टियां होती है लोग कैसे बिजी रहते हैं, है ना, रहते हैं ना वैसे बिजी, उससे ज्यादा बिजी रहेंगे। इन ऐसा बजाना तो जो मैं फी शुगुलिन फाकिहून, हुम वो अजवाज हूं फी जिलालिन अलल अराइकी मुत्तकीउन, वो और उनकी बीबियां सायों में तख्तों पे, थ्रोन्स पे तकिए लगाए बैठे होंगे। लहू फिया फाकेत हूं व लहू मा यद्दउन, वहां उनको हर तरह के मेवे मिलेंगे और जो चाहेगा मिलेगा। ये जो आए थे ना, ये सोचने के लिए आए थे, ये जो आए थे ना सोचने के लिए आए थे। लहू फिया फाकेत हूं व लहू मा यद्दउन, कुछ सोचेगा क्या फिर से मेवे खाने को मिलेंगे क्या। अल्लाह ने कहा नहीं, कुरान की जो वसत है ना, उस वसत को कोई अहाता नहीं कर सकता। वो लहु मा यद्दउन, जो तुम चाहोगे मिलेगा। आप ये जो आयतें हैं ये फिक्र की आयतें, जब ये आयत है पढ़े सूरह यासीन में, तो एक मोमिन का दिल जन्नत में रहता है, मोमिन का दिल जन्नत में और अश्कमयी रहता है। ये आयतें जन्नत के लिए है कि मोमिन का दिल जन्नत में चले जाए। आप सोचो जन्नत ऐसी होगी कि लोग खुशियों में मशगूल होंगे, पार्टी चल रही होगी, और क्या होगा वहां पर, वहां आपकी बीबियां होंगी और आप थ्रोन से बैठे हो। तफसीर में थ्रोन जो रहेंगे वो बड़े बड़े महलों में होंगे, जहां आप उन याकूत के महल होंगे, जहां आप अपनी बीवियों के साथ तकिए लगाकर बैठेंगे। आपको चाहिए आपका दिल वहां जाए, आप वहां रहे, मोमिन वहीं रहता है। उन बीवियों के बारे में सोचे, उन खूबसूरत उरों के बारे में सोचे, यही तो शान है परवरदिगार की कि आप उनके बारे में जब जब सोचेंगे तो सिवाय पाकी के कुछ नहीं दिल में आएगा, शैतान नहीं आएगा। यही तो उसकी खासियत है कि ये कुरान के वादे हैं, शैतान नहीं आता है इसमें। और आप नाम हेरोमों से और वसों से बचेंगे, क्योंकि अल्लाह चाहता है आपका दिल वहां लग जाए। सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, ये आया जो है ना पीक आया थे, सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, परवरदिगार तुम्हारे रब की तरफ से तुम पर सलाम हो। लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। इसकी तफसीर ये है कि सरवर काना सरकार कहते हैं रसूल अकरम कि ये जब जन्नती जब ये ऐश में होंगे और ऐश कर रहे होंगे और बिजी होंगे, खुशियां मना रहे होंगे हर तरह की नेमत में, तो एकदम से आस जन्नत के ऊपर रोशनी चमकेगी। वो जब रोशनी चमकेगी तो अल्लाह की आवाज आएगी, और उस आवाज में कोई बीज वाला नहीं होगा, उस आवाज में कोई बीज वाला नहीं होगा, और खुदा कहेगा मेरी तरफ से तुमको सलाम हो। जब ये होगा तो खुदा का दीदार होगा, अल्लाह की बनाई हुई रोशनी का दीदार होगा। जब वो दीदार होगा तो अहले भविष्य इतने खुश होंगे कि सारी खुशियां भूल जाएंगे, सारी के सारी खुशियां भूल जाएंगे अल्लाह के दीदार में। ये मुलाकात है खुदा की, ये मुलाकात है खुदा की। आप बस बहिश्त यही रहता है, एक मोमिन जो इस दुनिया में रहता है ना वो इसी मोमेंट के लिए जीता है, उसका दिल हमेशा उस मुलाकात में लगा रहता है। मौला मुत्तकियान का कौल है, मौला मुत्तकियान का क्या कौल है कि जो खुदा का जो मुझे दीदार होता है, अगर मैं उस दीदार से रोक लिया जाऊं तो मेरा इंतकाल हो जाए। मौला मुत्तकियान हमेशा खुदा के दीदार में रहते थे। मोमिनीन जब खुदा का दीदार करेंगे तो खुदाया तेरा दीदार के बगैर हम नहीं रह सकते। तो ये खुदा का दीदार होता कैसे है, कॉमन सेंस की बात बता दूं, जब खुदा को सुनोगे तो खुदा का दीदार भी होगा, कुरान सुनोगे कुरान पढ़ोगे तो खुदा का दीदार होगा। खुदा का दीदार यहां से शुरू होता है, खुदा का दीदार वहां पर नहीं होगा। जब मौला मुत्तकियान ने कह दिया कि अगर तुम मुझे रोक लो खुदा के दीदार से तो मेरा इंतकाल हो जाए, तो उन्होंने दुनिया के लिए कहा था। अरे मौला मुत्तकियान का शिया जो होता है वो दीदार इस दुनिया में करता है, हालत नमाज में कुरान के जरिए दुरूद पढ़ते हैं। खुदा का दीदार है। कुरान हकीम में तो सलाम रसूलों पर जरूर हुआ है, रसूलों पर सलाम आए। हर मोमिन की ख्वाहिश होती है कि खुदा का सलाम काश हम पे भी आ जाए। इसी गम में बैठे रहते हैं ना अपन, इसी गम में डरते रहते हैं ना कि काश खुदा कह देगा तुम पे हमारा सलाम हो। यही है ना, यही है ना, यही गम तो खाए जाता है हमको। अभी तो कुरान में कह के ना तो कोई खौफ रहेगा ना गम रहेगा हमको, बार बार कुरान में क्यों है वला खौफन अलैहिम वला हुम यहज़नून, हर जगह कुरान में आया ना तो खौफ रहेगा गम रहेगा। खौफ और गम क्या है हमारा, खौफ ये कि खुदा बख्शेगा कि नहीं, गम ये कि खुदा राजी हुआ कि नहीं। सलामुन कौलुम मिन रब्बिर रहीम, हम सब इसके बेताब है। खुदाया आज इस तारीख के रजब के महीने में हमारी दुआ कबूल कर कि जब तेरा सलाम आए तो हम भी मौजूद हो, दुरूद पढ़ दे। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, वम्ताज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, गुनाहगारों आज तुम अलग हो जाओ। तफसीर ने कि किससे अलग कर रहा है, अल्लाह मोमिनीन से अलग कर रहा है। दिखते तो मुसलमान थे लेकिन मोमिन नहीं थे, उसमें भी अलग अलग रैंक कर देगा अल्लाह। काश हम उनमें नहीं हो, काश हम उनमें नहीं हो, मुनाफ़त नहीं हो तबीयत में। अलम अहद इलैकुम या बनी आदम अल्लाह ताबुदु शैतान इन्नहु लकुम अदुवुम मुबीन। ये आदम की औलाद, मैंने तुमसे अहद न लिया था कि शैतान की परस्तिश न करना, बेशक वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो आनिबुदुनी हादा सिरातम मुस्तकीम, कि तुम बस मेरी इबादत करना जो कि सीधा रास्ता है। दुरूद पढ़ दें محمد وآل محمد علم عهد اليكم يا بني آدم الا تعبدوا الشيطان। क्या मैंने तुमसे वादा न करा था बनी इंसान, काश हम वो नहीं हो उन मुजरिमों से खड़े होकर अल्लाह कहेगा हमसे, कहे के क्या मैंने तुमसे वादा नहीं किया था कि तुम शैतान की परस्तिश न करना, काश हम वो नहीं हो। इन्हु लकुम अदुव मुबीन, वो तुम्हारा खुला दुश्मन है। वो आनिबुदुनी हादा सिरात मुस्तकीम, तुम मेरी परस्तिश कर, यही सीधा रास्ता है। हादा सिरात मुस्तकीम, शैतान की परस्तिश कैसे होती है? हदीस में है कि किसी का हुक्म मान के गुनाह किया, उसके गुनाह में शरीक हो गए तो आपने उसकी परस्तिश करी। यह हदीस है, इस तरह से शैतान की परस्तिश करते हुए किसी के गुनाह में हुक्म सुन के उसके साथ लग जाना उसकी परस्तिश है, उस शख्स की परस्तिश है। और अल्लाह की परस्तिश कैसे होती है? आई माने का अल्लाह की परस्तिश वो होती है कि जो शख्स खुदा की तरफ बुलाए, खुदा की तरफ बुलाए और उसकी बात सुनो, आप इताअत करो, तो आपने खुदा की परस्तिश करी। सही आलिम दीन का होना ज़रूरी है, क्योंकि खुदा की तरफ लेके जा रहे। मुश्किल ये है कि ये कयामत के मंजर से लेके जब यहां खड़े रहेंगे लोग, वो वहां तक का जो मंजर है जन्नत तक का, वो बड़ा लंबा सफर है। इसमें शैतान बीच में आता है, शैतान बीच में, शैतान परस्तिश करवाता है अपनी। ये जो मस्जिद है ना, जैसे भूखे नंगे उठे थे और जाके वहाँ सलामुल कौरुम में रब्बे रहीम की जो मंजिल, बहुत लंबी मंजिल है। उस मंजिल में कौन आएगा? सूर्य असर वाले लोग आएंगे, जिन्होंने हक की और सब्र की तलकीन करी जुल्म के खिलाफ। जी हाँ, ये जो लंबा सफ़र है जुल्म के खिलाफ है। शैतान जुल्म करता है, जालिम होता है शैतान, और जिसने उसकी पैरवी कर ली वो उसकी परस्तिश करता है। ये जो मार्का है ना, यही अहले बैत का मार्का है, यही अहले बैत का मार्का है। जो आज मंडली से इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम की, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद मोहम्मद, 6 साल की उम्र में इमामत की जिम्मेदारी संभाली, 6 साल की उम्र में। और बाज़ रवायतों में 40 साल की उम्र तक आपकी हयात रही, बाज़ रवायत 42 साल की उम्र तक आपकी हयात रही, सिर्फ इतनी हयात रही। और इतने सालों तक तागूत से लड़ते रहे, इतने बनी अब्बासी आया जो कि आधी दुनिया पे कंट्रोल करते थे, तागूत से लड़ते रहे, शैतान से लड़ते रहे, तागूत से लड़ते रहे। इसलिए शियत जो है वो है तागूत के खिलाफ। ये जो रास्ता है ना, खड़े होने से लेकर जन्नत तक जाने का, अब इमाम हुसैन समझ में आया, सरदार जमाने ने जन्नत सलाम उलम रब रहीम, तागूत की लड़ाई है। इस दुनिया में जो है ना, अल्लाह और रसूल, इन्होंने अपने हुक्म भेज, इनके हुक्म है। जब रसूल चले गए तो रसूल ने विलायत का ऐलान कराया। ये विलायत इसलिए थी कि विलायत के जरिए तुम अल्लाह की इबादत करना, शैतान की परस्तिश ना करना। मुसलमान आज समझ में आ रहा है, मुसलमान को आज समझ में आ रहा है कि जो यजीद की जो बादशाह थी वो गलत थी। आज समझ में आ रहा है मुसलमान को, क्यों समझ में आ रहा है? कि जो यजीद था आलिम नहीं था, यजीद जो था वो आलिम नहीं, जाहिल था, शराबखोर था। मुसलमान को आज समझ में आ रहा है कि यजीद को की बात मानना शैतान की परस्तिश करना है। क्यों समझ में आ रहा है? क्यों आज मुसलमान ने देख लिया कि इतने मुस्लिम मुल्क हैं और वहां जो बादशाह मौजूद हैं ये सब तागूत के गुलाम हैं, और ये सब इनके पास हर मुसलमानों को बिलियंस ऑफ डॉलर रखा हुआ है। हर मुसलमान मालूम है 50 या 100 या 200 बिलियन डॉलर रखा है, तो ये शैतान के पैरों में मोमिन तो नहीं है। तो अब मुसलमान को समझ में आ गया कि जो विलायत का जो हक है वो बादशाहों को नहीं है, आलिम को है। आज मुसलमान समझ में आ गया, इसलिए मुसलमान खुद कहता है कि मुस्लिम बादशाह तो है लेकिन मुस्लिम स्टेट नहीं है। आज पहले जब यजीद के टाइम मुसलमान कंफ्यूज था, सोचता था हो सकता है यही सही खलीफा हो, लेकिन आज समझ में आ गया मुसलमान को कि यजीद गलत है। आज के बादशाह को देख के बिलियन डॉलर का अकाउंट है, ये लोग शैतान के पैरो हैं, ये शैतान के पुजारी हैं, ये मुस्लिम स्टेट नहीं है। आज मुसलमान को शौक है कि काश हमारी मुल्कों में मुस्लिम स्टेट ले आए। ये बादशाह को मुसलमान नहीं मानते, इस बात का मुसलमान ने एतराफ कर लिया है कि अगर कोई मुस्लिम स्टेट का जो हाकिम होगा वो आलिम होगा, जाहिल ना होगा, मुत्तकी होगा। ला हो अकबर। यही वजह है कि जब इमाम आएंगे तो मुसलमान जाग चुका होगा कि यहां जो बैठेगा वो आलिम बैठेगा। इमाम हुसैन जो खड़े हुए थे बता लो खड़े हुए थे, उस जमाने में लोगों को समझ में नहीं आया था ये कि कौन बैठेगा। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम ने जिंदगी में कितने अब्बासी खलीफाओं का मुकाबला किया और ये सब के सब तख्त पे बैठा करते थे। इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम एक कोने बैठा करते थे और इबादत करा करते थे। बादशाह वक्त को तकलीफ होती थी, क्यों तकलीफ होती, उसको डर यह था कि लोग इनके पैर ना हो जाए, क्योंकि इल्म तो यहां है, काश ये लोगों को समझ में ये नहीं आ जाए कि जो हाकिम होगा वो आलिम होगा, मुत्तकी होगा, परहेजगार होगा। इसलिए मुतवक्किल ने इतने जुल्म करे, क्या करा मुतवक्किल ने, उसको मालूम था कि जब तक इमाम हुसैन का जब तक मुकाम है तब तक हिदायत मिलती रहेगी। तो मुतवक्किल ने मौला का इमाम हुसैन का रोजा शहीद करवाया और उसके आसपास पानी डलवाया, लेकिन अल्लाह ने मौजदा करके उस पानी को दूर रखा। क्यों मुतवक्किल परेशान था इमाम हुसैन रोजे से, क्योंकि जब तक इमाम हुसैन का रोजा था उसे मालूम था कि लोग कहेंगे कि जो वली होगा वो वली होगा, वो आले मोहम्मद में से होगा जो आलिम होगा। आज ये बात मुसलमान को समझ में आ रही है। हर जगह इनकलाब तो हो रहे हैं, लेकिन कहते हैं इस्लामी इनकलाब जो है वो ईरान में। क्यों? क्योंकि वो समझ में आ गया कि जो बादशाहों के इस्लाम है, बिलियन से डॉलर जो अकाउंट है, किसी मोमिन, हर मुसलमान को इतनी अकल है, हर मुसलमान को इतनी अकल है कुरान पढ़ के, ये कुरान पढ़ अकल है कि भाई जो जो वली होगा वो बिलियन से डॉलर नहीं रखेगा, 200 बिलियन 300 बिलियन वो वली नहीं है मुसलमानों का। आज मुसलमानों को समझ में आ गया, यही वजह है कि जब इमाम आएंगे तो उनकी विलायत का आसीन ऐसे कबूल किया जाएगा, उस दिन उनकी विलायत आसानी से कबूल हो जाएगी। लोग परेशान हो चुके हैं, लोगों का हक जाहिर हो चुका है कि आलिम वही है, हाकिम वही होगा जो आलिम बनेगा, जो आलिम होगा, और जो मुत्तकी और जो जुल्म के खिलाफ होगा। फलयोमा ला तज़लुम नफ्सुन शेवा वला तुज़ोना इल्ला मा कुंतुम तअमलून। कुरान की आयत है ना कि आज तुम पर कोई जुल्म ना होगा। इमाम जमा जब आएंगे तो इसी तरह करेंगे कि आज तुम पर जुल्म ना होगा, तुमको वो ही मिलेगा जो तुम किया करते थे। आज के बादशाह से पूछ ले क्या तुम ऐसा करते हो, ये जो तुम बने हुए आज क्या तुम ऐसा करते हो, लोगों को जुल्म ना करते हो, हजारों लोगों को जेल में डालते हो। फल युमा तुम शेरा, ये जाहिर है कि आज मुसलमान अब आले मोहम्मद रजू कर रहा है, कि उसको मालूम है कि जब वो लाएंगे तो जुल्म ना करेंगे, वो करेंगे जो कि जो तुमने किया था। हाय हमारे मौला की तकालीफ। आप सोचे कि मौला इमाम अली नकी अलैहिस्सलाम मदीने में मुकीम थे और बादशाह को तकलीफ हुई कि लोग उनके आसपास घेरे हुए, तो मदीने से मौला को मुतवक्किल कहा कि आप यहाँ तशरीफ लाएं, सामरा फौज भेजिए, सब भेजा। जब सामरा आए तो मौला को जलील करने की कोशिश की गई और मौला को ऐसी जगह रखा जहाँ पर के फकरा रहते थे, और 12 साल तक सईद नाम के आदमी ने मौला को अजियतें दी, इतनी अजियतें दी, और हमेशा परेशान इसलिए रखा कि लोगों का दिल उनकी तरफ रुजू थे, क्योंकि रूह तो जाती है ना मोमिन की, हक की तरफ जाती है रूह। मौला को अजियतें दी, इतनी अजियतें दी मौला को कि जिसकी कोई इंतहा नहीं। उसके बाद मुताज आया, मुताज वो खलीफा था बनी अब्बास का, जिसने कहा आखिरी में परेशान होकर घबरा के, क्योंकि मौला की इतनी शोहरत फैल चुकी थी कि मौला को शहीद कर दिया। हाँ, जब मौला शहीद हुए तो मौला को जहर दिया गया, और जहर जब उनको दिया गया तो मौला तड़पने लगे, उनकी तड़पन, उनकी तकालीफ, अरे याद आती है तो कई तकालीफें याद आती हैं, एक के बाद एक सारे इम्मा की तकालीफ याद आती है। हाय मौला मुत्तकियान को 19 को जब जरूरत पड़ी थी तो 21 तक तड़पे थे, हाय मूसा कासिम अलैहिस्सलाम 3 दिन तक तड़पे, हाय इमाम अली रजा अलैहिस्सलाम तड़पते रहे 3 दिन तक। अरे हमारे अइमा तड़पे हैं मोमिनो, अरे कैसे तड़पे हैं हक के लिए। हाँ, इनका तड़पना था कि जो हक के लिए तड़पे, लेकिन एक तड़प अजीब थी अजहर की, के प्यासे थे, नन्हे से थे, अरे धूप थी, और पितर की गोद में तड़पने लगे।